ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का ये तृतीय स्कंध अध्याय संख्या 25 श्लोक संख्या 35। पश्यन्ति ते मे रुचिरण्यं वसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपानि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ये भक्ति योग की महिमा नामक अध्याय हम पढ़ रहे हैं और ये वचन कपिल देव जी के हैं। भगवान स्वयं ही भगवान भक्ति का महिमा सुना रहे हैं। किनको सुना रहे हैं? भक्तों को। अपनी माता को सुना रहे हैं, देवहूति माता को सुना रहे हैं। लेकिन देवहूति माता तो पहले ही भक्ति की महिमा तो जानती है। जैसे अर्जुन भी जानते हैं भगवत गीता का उपदेश, भक्तोसि में सखा च इति तदहि रहस्य उत्तमम्। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, भगवान ने कहा अर्जुन को, चौथे अध्याय में ही कहा शायद, गीता के प्रारंभ में ही भगवान ने कहा तुम मेरे भक्त हो। तो भक्तों क्या क्या बताने की आवश्यकता है? मन मना भव मद भक्त, मेरा भक्त बनो। अर्जुन तो पहले ही भक्त है। भक्त कौन नहीं है? हम लोग भक्त नहीं है। इसलिए गीता का उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन निमित्त है। उसी प्रकार ये उपदेश भक्ति का महिमा का गान ही देवहूति के लिए नहीं है, देवहूति के लिए भी है। और वैसे भगवान तो हम बद्ध जीवों का ही स्मरण करते रहते हैं, इसलिए किसी भक्त को माध्यम बना के ये उपदेश सुनाते हैं। लेकी बोले सुने लागे, ये कहावत मराठी लोग जानते हैं, लेकी बोले सुने लागे। नई बहू आई है अभी अभी, उसको कुछ सिखाना समझाना है, कभी डांटना पीटना तो नहीं, डांटना है तो चालाक सास जो होती है वो क्या करती है? अपने बेटी को डांटती है, और तब डांटती है जब सास भी वहां बगल में खड़ी है। तो फिर सास बहू समझ जाती है ये डांट फटकार तो ऐसे मेरे लिए है, और बेटी भी जानती कि ये डांट फटकार मेरे लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है। हमारे संस्कृति में ये चलता है, ये भी सदाचार है, वैष्णव एटिकेट ये भी है। कैसे सिखाना, कैसे चालाकी से अपने संदेश को पहुंचाना उन्हीं व्यक्तियों के पास जिनको उस संदेश को सुनने की अधिक आवश्यकता है। तो भागवत का संदेश श्रीमद् भागवतम हम बद्ध जीवों के लिए है, ये भक्ति का महिमा, भक्ति योग की महिमा हम सभी के लिए है। तो भगवान यहां प्रकट हो रहे हैं, तो भक्ति सीखनी होगी ताकि हम लोग भगवान की भक्ति कर पाएंगे। भगवान तो पहुंच गए लेकिन भक्त नहीं है, तो भगवान को मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं लुट पाएंगे भगवान। क्या हुआ, आइए हम श्रवण करते हैं अनुवाद और तात्पर्य का। हे माता, देवहूति माता को कपिल देव संबोधित कर रहे हैं। हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त मेरे प्रसन्न मुखमंडल वाले रूप का अवलोकन करते हैं। भगवान अपना ही गुणगान बड़प्पन सुना रहे हैं, इसमें कोई अहम की बात नहीं है, सत्य की बात है। भगवान एज इट इज सुनाएंगे। हम लोग सुंदर नहीं होते लेकिन हम बताते तो है या समझते कि हम बहुत सुंदर है। लेकिन भगवान तो सुंदर है ही, तो जैसे भी वे हैं केवल सुना रहे हैं वे कैसे हैं यथारूप। वे मेरे मित्र विभिन्न दिव्य रूपों को देखना चाहते हैं। वे मेरे मित्र भक्त मित्र, भक्तों को भगवान यहां कह रहे कि वो मेरे मित्र सुरिदम सर्वभूतानाम। भगवान घोषित किए हैं भगवद गीता में कि वे सभी जीवों के सुहृत मित्र है, परम मित्र है। यहां भी कह रहे हैं कि वे मेरे मित्र विभिन्न विभिन्न दिव्य रूपों को देखना चाहते हैं और साथ ही मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं। ऐसा कभी आपने सोचा था? एक थोड़ी आगे की बात यहां कही है। देखना तो हम चाहते हैं भगवान को, आप भी भगवान के दर्शन के उद्देश्य यहां आए हो उत्कंठित होके, लेकिन क्या आपने ये भी सोचा था कि हम क्या यथासंभव हम भगवान से कुछ अनुकूल भाषण संभाषण भी करना चाहेंगे, क्या संभव है? आज जब मिलेंगे देखेंगे प्रभु को तो हम उनसे बात भी करेंगे, इसे अक्रूर ने सोचा था जब वे ब्रज की यात्रा में जा रहे थे। आप में से किसी ने ऐसे कभी आज या कभी भी इस जीवन में कभी सोचा था? हो सकता है आप में से कईयों ने सोचा होगा, केवल हम जानना चाहते हैं। किसी ने सोचा कि भगवान से हम क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे, हाउ आर यू? पहले प्रश्न तो क्या होता है, आपकी गाय कैसी है, ये बछड़े कैसे हैं? उस व्यक्ति के वर्ण और आश्रम के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्राह्मण को एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो क्षत्रिय को दूसरे प्रकार का, तो वैश्य को तीसरे प्रकार का, तो दासों को और प्रकार का। तो भगवान तो गाय के रखवाले हैं। नंद गोधन रखवाला, तो उनके गाय की पूछताछ आप करोगे गाय कैसी है तो कौन प्रसन्न हो जाएंगे? हाँ, कौन? अब बोलते क्यों नहीं? सोचा था कि आपसे बोलेंगे हम आज, क्या आप हमसे बोलोगे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे आप। अनुवाद को फिर से सुन लीजिए। हे माता, मेरे भक्त नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य, उदीयमान आज तो देखा ही नहीं सूर्य को, सूर्य का उदय नहीं हुआ है, देखा नहीं मतलब नहीं है, ऐसी बात नहीं। उसी प्रकार भगवान को देखा नहीं है मतलब ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते, भगवान है नहीं। हम बादल के ऊपर अगर जा सकते हैं, हवाई जहाज में अगर बैठेंगे तो एक मिनट में हम सूर्य का दर्शन कर पाएंगे। एक छोटा बालक कह रहा था, मम्मी मम्मी झूठ कही कि तुमने तो कहा था, हम एक समय जब आए पुणे एयरपोर्ट पर उतरे तो एक बच्चा अपनी मम्मी से कह रहा था कि तुम तो कहती रहती थी कि भगवान ऊपर है, आज तो हम ऊपर गए थे, भगवान को तो मैं खिड़की में से देख रहा था लेकिन भगवान तो नहीं दिखाई दिए। झूठ कही कि ऐसी बोल भक्ति रहती हो। तो कम से कम सूर्य तो देख पाएंगे, भगवान तो और भी ऊपर है। माया का जो भ्रम है, माया का जो बादल है, उससे अगर हम ऊपर उठ सकते हैं, इस बादल के ऊपर उठेंगे जो हमारे आंखों के समक्ष है, तो सूर्य का दर्शन होगा और माया का जो बादल है, अहम अज्ञान जम तमः, अज्ञान से उत्पन्न जो तम अंधकार है, उससे अगर हम ऊपर उठ सकते हैं, उत्तम उत्तम तम से ऊपर, तो फिर हम भगवान का भी दर्शन कर पाएंगे। तो नित्य ही उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश नेत्रों से युक्त, मतलब यहां कहा है ना, पश्यन्ति ते मे रुचिर रुचिराणी अम्ब संतः, संतः संत देखते हैं। संत क्या करते हैं, क्या करते हैं संत? देखते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, विलोकयन्ति मतलब देखते हैं। संतः सदैव हृदयेषु विलोकय, हृदयेषु विलोकयन्ति देखते हैं। तो विलोकयंती के जगह पर यह कहा है पश्यंती, पश्यंती विलोकयंती एक ही बात है। पश्यंती ते पश्यंती वे देखते हैं, ते संतः पश्यंती वे संत वे भक्त देखते हैं, मेरे रुचिराणी सुंदर वक्त्र, मेरे सुंदर मुख को वे संत देखते हैं। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? रुचिरानी और कैसा है भगवान का, प्रसन्न वक्त्र अरुण लोचनानी, भगवान का वक्त्र, वक्त्र मतलब मुख, ऐसा है रुचि रानी, सुंदर है प्रसन्न है भगवान को। जब भी हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करते हैं तो भगवान कैसे लगते हैं? प्रसन्न लगते हैं। कभी कभी क्रोधित भी, कुछ भक्त है इज एंग्री टुडे, क्रोध में है भगवान। तो हमारे भाव के अनुसार भी कभी कभी भगवान अलग प्रकार का दर्शन देते हैं। लेकिन अधिकतर उनके मुखमंडल में चेहरे पर क्या प्रसन्नता का अनुभव दर्शन ही हम करते हैं। प्रसन्न वक्त्र अरुण लोचनानी, लोचन लोचन लोच लोचन 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 का है लोचन, हाँ मराठी गीत का है लोचन, सुंदर ते रूप पहाता लोचनी, रूप पहाता लोचनी सुख झाले हो साजनी, तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा, बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवड़ी। और ये सब संभव है, बहुत सुकृतांची जोड़ी, सुकृत अच्छे कृत्य पुण्य भक्ति खूब जिन्होंने की है, बहुत सुकृतांची जोड़ी ग्रैंड टोटल अगर बड़ी है, बहुत सारे पुण्य कर्म जिन्होंने किए हैं, भक्ति के कर्म किए हैं जिन्होंने, बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवड़ी, इसी को विठ्ठल भाते हैं, विठ्ठल से भगवान से रुक्मिणी द्वारकाधीश से और हमारे राधा पंढरीनाथ से, उनका उन्हीं का प्रेम होगा, उन्हीं को अच्छे लगेंगे भगवान जिन्होंने क्या किया है, बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणून, इसीलिए विठ्ठल आवड़ी। और वो विठ्ठल कैसे हैं, उनके रूप पहाता लोचनी सुख झाले वो साजन, यहां पर लोचन भक्तों के लोचन, भक्तों के आंखों की बात है। भक्त जब अपने लोचन से अपने आंखों से भगवान को देखते हैं तो क्या होता है, सुख झाले सुख अनुभव करते हैं भक्त। या लोचनानी कहां है, लोचन और लोचनानी में क्या भेद है, लोचन क्या होता है, लोचनानी क्या होता है, लोचन मतलब एक और लोचनानी मतलब दो नहीं, लोचन लोचने लोचनानी कई सारी आंखें, तो कई रूपों की बात है तो कई आंखें हैं, रूपानी दिव्यानी, तो लोचनानी भगवान के लोचन आंखें कैसी है, अरुण लोचनानी, अरुण अरुण बिंब फल अधरोष्ठात, भगवान के जो ओठ है, कल हम देख रहे थे राधा पंढरीनाथ के विग्रह का दर्शन कल ही कर रहे थे हम, ऐसे आपके पहले हमने दर्शन देख रहे थे जयपुर के शिल्पीकारों ने, तो हमने थोड़ा देखा और हम चर्चा करें, नहीं नहीं ये ओठ ओठों का रंग ठीक नहीं है, ओठों का रंग ठीक नहीं था, राधा रानी का कुछ ठीक था लेकिन प्रभु जी का ठीक नहीं था, कन्हैया का पंढरीनाथ का। हम फिर सोच रहे थे जब अरवड़े से आएंगे हमारे प्रभु जी, आत्मनिवेदन प्रभु तो उनको कहेंगे ये सुधार करना, तो शास्त्र चक्षुषा शास्त्र, हम शास्त्र चश्मा है, इसमें से हम देखते हैं भगवान के ओठ कैसे हैं, आंखें कैसी है, भगवान की आंखों में लालिमा है अरुण, जैसे प्रातकालीन उदीयमान प्रभात के सूर्य सदृश, अरुण, अरुण मतलब आकाश, अरुण, अरुणोदय झाला, अरुणोदय जब होता है तो लगता है कोई गुलाल को फेंक रहा है, गुलाल ओढ़त आहे कोणी पूर्व दिशेला, असं कवी कल्पना करतात, विचार करतात, उत्सव चाललाय काही. तेव्हा तो ओ जो पूर्व दिशा की लालिमा, वही भगवान के आंखों अभी रंग. भगवान स्वयं बता रहे, या कौन बता रहे, भगवान स्वयं बता रहे, ये सेकंड हैंड थर्ड हैंड की बात नहीं है. कभी कभी हम लोग कुछ समाचार हम तक पहुंचता है लेकिन वो सीधे नहीं पहुंचता. कैसे पहुंचता है? सेकंड हैंड, कहते सेकंड हैंड, मतलब वो मूल व्यक्ति ने किसी को कहा, उस व्यक्ति ने हमको कहा, तो कुछ भरोसा नहीं है. वो बीच में कुछ मिर्च मसाला लगा सकता है, और कुछ कुछ काट छाट कर सकता है, घटा बढ़ा के कुछ कह सकता है. लेकिन यहां क्या बात हो रही है, भगवान स्वयं ही कह रहा है, अपने रूप का वर्णन स्वयं ही भगवान सुना रहे हैं. ऐसी व्यवस्था और कहीं नहीं है. ये व्यवस्था केवल भागवत धर्म के, श्रीमद् भागवत के कथाओं में है या वचनों में है. भागवत पुराण में है. ऐसी बातें कुरान में नहीं मिलेगी, केवल पुराण में मिलेगी, न तो बाइबल में मिलेगी. ऐसा वर्णन कहां मिलेगा? चलो भगवान निर्गुण ही है कह दो, बस फिनिश, और क्या बात करनी है. भगवान निराकार है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम. तो वाह, प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनानि रूपानि दिव्यानि वरप्रदानि. तो भगवान के कई सारे रूप है. रूपानि, कैसे रूप है? दिव्यानि. और कैसे है? वरप्रदानि. अच्छा वर्णन है. पहले तो लोचनानि कहा है. लोचनानि, पश्यन्ति, देखना चाहते हैं, या संत देखते हैं. प्रसन्न वक्त्र अरुण लोचनानि, ऐसे लोचन, प्रफुल्लित जिनका मुखमंडल है, हास्य की छटा जिनके मुखमंडल पर है. अरे, और उनकी आंखें कमल खिले हुए हैं, दो कमल खिले उनके मुखमंडल पर. लोचनानि और रूपानि दिव्यानि, कई सारे दिव्य रूप. अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के कई सारे नाना अवतार मकरोत भुवनेशु किंतु, किंतु लेकिन, कृष्ण स्वयं, भगवान के तो कई अवतार है लेकिन किंतु कहके भगवान की जो भगवत्ता है, कृष्ण की भगवत्ता, या अपना भगवान कृष्ण कुछ निराले ही है. अन्य तो कई नाना अवतार म करो भुवनेशु किंतु, भगवान के तो कई सारे अवतार होते, किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परमः उमान्यो, परम है. ऐसे गोविंद को, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी. तो भगवान के कई सारे रूप है, दिव्य रूप है, भौतिक रूप नहीं है, लौकिक नहीं है, कैसे अलौकिक है, दिव्य है। सच्चिदानंद विग्रह ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान के विग्रह, विग्रह मतलब विग्रह किसको कहते हैं विग्रह? मैं प्रश्न पूछूंगा तो फिर जवाब आएगा तो फिर याद रहेगा, इसीलिए हम पूछते हैं। आपके मन में थोड़ा प्रश्न जब खड़ा होगा फिर उत्तर सुनेंगे, नहीं तो हम सीधे ऐसे कह दे जाएंगे प्रश्न पूछे बिना, तो फिर आप नोट नहीं करोगे। ये आइडिया है। तो विग्रह मतलब भगवान का साकार रूप, भगवान का सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद। और ये रूप कैसा है? वर प्रदानी, वरदायक। दक्षिण भारत में एक विग्रह का नाम ही है वरदराज, वरद और फिर केवल वरद ही नहीं, वरदराज राजा है। किनके राजा है? वर देने वालों में वे राजा है। राज विद्या, राज गुह्यम, किंग ऑफ नॉलेज, विद्याओं का राजा, विद्याओं की। तो हुआ वरदराज। हमने भी प्रार्थना की वरदराज, हम पदयात्रा में गए तो हुआ जब सुना, सोचा कि ये भगवान दक्षिण भारत में कांचीपुर में वरदराज है, विष्णु कांची में। एक शिव कांची है और दूसरा है विष्णु कांची तमिलनाडु में। तो पदयात्रा में जब जा रहे थे तो आ गए, प्रभु जी आ गए। कौन से भगवान आ गए? वरदराज का दर्शन। हमने सोचा कि चलो लाभ उठाते हैं और पैसा वसूल करते हैं। समझते हो, मराठी लोग पैसा वसूल करना चाहते हैं। हमने भी हमारी ओर से एक प्रार्थना कही, वरदराज भगवान से प्रार्थना हमने की कि मेरे गुरु भाई कितनी सारी सेवा कर रहे हैं और कई सारे भक्त कितनी बहुत सेवा करते, लेकिन मुझे उतनी सेवा प्राप्त नहीं है, प्रभु मुझे भी सेवा प्रदान कीजिए। इस भाव की हमने प्रार्थना प्रभु के चरणों में की, बहुत सेवा मिल गई। इतनी सेवा मिली पुनः जब गए तो भगवान से कहा, प्रभु थोड़ी कम बहुत हो गई, ज्यादा आपने थोड़ा जितना मांगा था उससे अधिक ही बड़ा वर दिए आप, थोड़ा रोकथाम लगाइए। तो वरदराज वर प्रदानी और साकम मेरे साथ, वाचम शब्द वचन, स्प्रहणीयाम अनुकूल, वदंती कहते हैं, कहना चाहते हैं, उससे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, संभाषण करना चाहते हैं। कौन कौन है ये संत? शुरुआत में कहा है ते संत, वे संत, ऐसे संत मेरा दर्शन भी करना चाहते हैं और मुझसे कुछ बातचीत भी करना चाहते हैं। भक्ति योग का ये महिमा है, भक्ति योग का ये फल है, भक्ति से ही योग संबंध है, संभव है, योग मतलब संबंध, भगवान से पूरा का पूरा संबंध तो भक्ति योग से ही संभव है। ज्ञान से भी कुछ, ज्ञान योग भी है, ज्ञान से भी कुछ संबंध प्रस्थापित जरूर होता है और योग से भी, अष्टांग योग से भी कुछ संबंध जरूर प्रस्थापित होता है, कर्म योग से भी कुछ संबंध जरूर प्रस्थापित होता है, लेकिन शत प्रतिशत 100% लेन देन प्रभु के साथ तभी संभव है जब व्यक्ति भक्ति योग के स्तर पर पहुंचता है। तो योग की पूर्णता क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग ही योग की पूर्णता है, बाकी सब योग योगों की अपूर्णता है। योग संपूर्ण होता है, समापन हो गया। ओम पूर्णमदः, पूर्ण हो गया। जब व्यक्ति भक्ति योग को अपनाता है और उस स्थिति में वो दर्शन भी करता है, मेरे भक्त सर्वत्र है, इष्ट इष्टेरस इष्ट देवेरस स्फूर्ति, सावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, सर्वत्र स्फूर्ति। कहा है कि भगवान के भक्त जो अपने इष्ट देव का ही स्मरण करते हैं, अंतरंग में जो प्रभु का दर्शन करते हैं, पश्यन्ति देखते हैं, विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम, श्याम सुंदर का अपने हृदय प्रांगण में जो दर्शन करते हैं, उसी में जो तल्लीन है, उसी में जो लीन है, उनको क्या नहीं दिखाई देता है? स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, जैसे वे जा रहे हैं तो स्थावर जंगम, स्थावर जंगम आप समझते हो, स्थावर मतलब स्थिर बिल्डिंग है, जंगम कोई कार है, कोई मनुष्य है जो घूमता फिरता है, मोबाइल है, नॉट जस्ट टेलीफोन, मोबाइल जो भी मुंह चलता है, चर अचर कहते हैं ना, चर अचर, तो स्थिर अस्थिर या चलायमान। स्थावरानाम हिमालय, हिमालय क्या है? स्थिर है, स्थावर हो गया। तो जंगम तो पंछी भी है और कई सारे, तो स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, स्थावर जंगम को देखते तो है लेकिन मानो उन्होंने देखा ही नहीं, कुछ ज्यादा सोचते नहीं, ज्यादा विचार नहीं, कहा ठीक है जो भी है, क्योंकि वो पहले वो देख रहे हैं, पहले ही वे व्यस्त है किसमें? देखने में। किसको देख रहे? इष्ट देवेर स्फूर्ति, अपने इष्ट देव, इष्ट अपने प्यारे, अपने आराध, हर एक के अपने अपने आराध्य देव होते हैं, जैसे कई उनका गणेश, गणेश जी है, तो गणेश जी की पूजा वैसे कुछ कुछ मिनटों के लिए करनी होती है, ताकि आगे जो भक्ति करनी है उसमें कोई विघ्न नहीं आए, इसीलिए भक्ति के प्रारंभ में इसका गणेश विघ्नहर्ता। लेकिन कुछ लोग तो क्या करते हैं, जीवन भर एक जीवन लगाते हैं, पता नहीं फिर आगे कितने जीवन भगवान की सेवा करने वाले हैं, एक जीवन भर फुल लाइफ में क्या करते रहते हैं, गणेश जी की रात दिन गणेश जी की पूजा करते हैं, वो सीखे समझे नहीं, ये भागवत धर्म नहीं, गणेश जी के चरणों में भी हमारे प्रणाम और वंदना करते हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, तब वह। लेकिन भगवान जैसे अवतार की बात कर रहे थे, फिर देवता है, ये सब कई कई सारे सुधार की आवश्यकता है। ये लोग जो समझे ही नहीं, धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म जो है भगवान का दिया हुआ, भगवान के नियम चलते हैं, लेकिन अपने मनोधर्म की कई बातें चलती है संसार में। और वैसे कामैस्तैस्तैर ऋतज्ञाना भी चलता है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनका ज्ञान को चोरी किसने की, मायया अपरित ज्ञाना, माया चुरा लेती है ज्ञान को, या काम वासना, कामैस्तैस्तैरृतज्ञाना, काम काम काम, दो ही तो चीजें, एक तो प्रेम होता है, दूसरा क्या होता है, काम होता है, काम। इस संसार में प्रेम नहीं है, इस प्रेम जो है संसार की वस्तु नहीं है। इसकी खूब चर्चा तो होती रहती है, लोग कहते भी रहते हैं, आई लव यू, ये लव तो वैसे संसार का काम है। लव तो बड़ी डिवाइन अलौकिक वस्तु है, जिस पर अधिकार नहीं है बद्ध जीवों का। लव तो भगवान के जीवात्मा और भगवान के बीच का जो आदान प्रदान है, प्रेममय स्नेहमय संबंध है, वो लव, दैट इज लव। और फिर भक्तों के साथ भी प्रीति लक्षणम, षडविधम प्रीति लक्षणम, भक्तों के प्रति, भक्त और भगवान और भक्त और भक्त, इनके आपस में जो संबंध प्रीति, वो दिव्य है, वो अलौकिक है। तो प्रेम के बिल्कुल विपरीत है काम। तो काम से जो लिप्त है, कई लोग मंदिर में आ जाओ, चलो चलो राधा पंढरीनाथ का मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप आ रहे हैं ना, लोग क्या कहेंगे, नहीं आ सकते जी, थोड़ा काम में है। किसमें है, थोड़ा काम में है। तो फोन करने वाला हरे कृष्ण भक्त समझ, हाँ हाँ आप काम में हो, समझ गए, आप तो काम में तो सदा रहते ही है, काम में। तो यहां काम दो प्रकार के काम हो गए, काम तो काम कार्य, और काम मतलब काम वासना, काम वासना से प्रेरित कार्य, काम हो गया। और भगवत प्रेम से प्रेरित कार्य, वो प्रेम हुआ, प्रेममयी सेवा हुई भगवान की। तो भगवान बड़ा सरल साफ कहे हैं, कामैस्तैस्तैरृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, औरों की देख लो भाई, औरों की शरण लेते हैं भाई, मेरी ओर नहीं आते हैं। कई लोग औरों, बगल के दुकान है ना, उन दुकानों में जाते हैं, अन्य देवता प्रपद्यन्ते अन्य देवता, लेकिन जिनको ज्ञान हुआ है, जो ज्ञानी है, सही ज्ञान एवं परंपरा प्राप्तम वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है वो ज्ञानी ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण लेते हैं भगवान कहते हैं। भेद देखिए, ज्ञानवान क्या करता है, क्या ज्ञानवान करता है बोलो, भगवान की शरण लेता है। और ज्ञान है क्या, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम इति, ये ज्ञान है, इति भी नहीं, इतना सा, वासुदेव सर्वम इति मतलब इतना जानना ही ज्ञान है। क्या ज्ञान क्या है, ज्ञान की क्या परिभाषा हो गई, वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही सब कुछ है, इज ऑल इन ऑल। प्रभुपाद भगवान कृष्ण वासुदेव कैसे, ऑल इन ऑल सब कुछ, वासुदेव ही सब कुछ है। इतना जो जानता है वासुदेव सर्वम इति, उसको भगवान ने कहा ज्ञानवान। ऐसा इतना समझा हुआ ज्ञानी ज्ञानवान क्या करेगा, माम प्रपद्यते, मेरी शरण लेगा। तो गीता का रहस्य कर्म योग नहीं है, हम लोग भक्ति योग अध्याय लेके बैठे हैं, भक्ति योग की महिमा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जो हमारे धर्म का सार है भक्ति योग। तो गीता का भी वही सार होना चाहिए। तो गीता का सार या रहस्य कर्म योग नहीं है, विशेषकर जो पुणे से जो भक्त आए हैं उनको समझना होगा। क्यों, क्योंकि पुणेकर, एक पुणेकर हुए, पुणेकर कौन थे, वो पुणेकर लोकमान्य तिलक, पुण्याचे थे, तो उन्होंने अपना दिमाग लड़ा के निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष, गीता का रहस्य क्या है, कर्मयोग। भगवान तो और ही कुछ कहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मता, युक्ततम श्रेष्ठ योगी तो भक्ति योगी है। सब योगों के नाम गिनाने के उपरांत, वर्णन के उपरांत, अंत में भगवान का निष्कर्ष क्या है, गीता के छठवें अध्याय के अंत में, उसके पहले कर्म योग सुनाया, ज्ञान योग सुनाए हैं, अष्टांग योग भी सुनाए हैं, भगवान स्वयं कह रहे कि सब योगों का राजा कौन सा योग है, भक्ति योग। श्रेष्ठ योग कौन सा है कहो, सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है। तो बाहर जाने के बाद उल्टा करना नहीं, इस इतना मन में रखो, उसकी ये धारणा होनी चाहिए मन में, सबसे श्रेष्ठ योग, कम से कम इतने तो लोग समझ गए, ये दूसरी भीड़ इकट्ठा करके हम उनको भी कहेंगे। लेकिन वैसे एक तो ऊपर से कहने की बात और फिर अंदर से साक्षात्कार की बात, विज्ञान और क्या होना चाहिए, विज्ञान भी होना चाहिए। वक्ता ने कह भी दिया और फिर आपने, आप भी केवल नंदी बैल जैसा हा में हा मिलाया। हमें अनुभव करना होगा और चिंतन से और श्रवण से। हाँ, यह बात सही है, सर्वमी तदृतम मन्ने यन माम वदसी केशव। हे केशव, अर्जुन ने कहा, आप जो भी कह रहे हो, दसवें अध्याय में अर्जुन कहते हैं, आप जो भी कह रहे हो, क्या कहते हो आप? सर्वमित रितम रितम, सत्य कह रहे हैं आप। जो भी मैं जो भी कहूंगा, क्या कहूंगा? सच कहूंगा, सच के अलावा और कुछ नहीं कहूंगा, झूठ के अलावा। फिर उसको रख देते हैं और फिर जब फिर बोलना शुरू करते हैं, फिर झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलते। तो अर्जुन ने कहा, भगवान आप जो भी कह रहे हो आप सच कह रहे हो। तो सब योगों में श्रेष्ठ योग भक्ति योग। तो गीता का रहस्य कर्म योग नहीं है, भक्ति योग है। ये यथारूप ज्ञान हुआ, ये भगवत गीता एज इट इज हो गई। और ये जहां तक योग की बात है, भक्ति योग श्रेष्ठ है। फिर जहां तक आराध्य देव की बात है, इष्ट देव की बात है, तो कौन से इष्ट देव होने चाहिए? फिर आपके पुनेकर, उनको उन्होंने एक तो कहा कि गीता का रहस्य है क्या? कर्म योग। हरि बोल। फिर और किसी ने वैसे गीता का रहस्य अहिंसा कहा है, ऐसे कई सारे मनोधर्म हैं। तो पुनेकर फिर कहते हैं कि आराधना उन्होंने किसकी सिखाई सबको? गणेश जी की, वही संस्थापक आचार्य, गणेश पूजा के संस्थापक आचार्य। तो कहां से? गीता में तो कई न तो कई भागवत में ऐसा पूजा जरूर है उनकी, हमारे धर्म के अंग जरूर है वे, उनका भी स्थान है अपना। लेकिन जहां तक जीवों के आराध्य देव, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधुवर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमभूमार्थो महान् श्रीमद् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदम् तत्रादरो न परः। चैतन्य महाप्रभु का पुनः भगवान स्वयं ही समझाए, चैतन्य महाप्रभु समझाए। जहां तक मनुष्यों के आराध्य देव की बात है, आराधना का प्रश्न है, किसकी आराधना करें? तो कहते आराध्यो ब्रजेश तनया। ब्रजेश कौन है? ब्रज के ईश कौन है? दोनों जवाब आते रहते हैं वैसे। तो नंद के बाबा, नंद के, नंद का गोकुल कहा है भागवतम में, नंद गोकुलम नंद ब्रजम कहा है। वृंदावन नंद महाराज का है, गोकुल नंद महाराज का है, उनके पुत्र का थोड़ी। वैसे बाप की प्रॉपर्टी बेटे की जरूर होती है, लेकिन पहले किसकी होती है? बाप की होती है। बाप यहां कौन है? नंद बाबा है। तो नंद बाबा को कहा ब्रजेश, ब्रज के ईश, तो नंद बाबा है। फिर उनके तनय, तनय मतलब पुत्र, तो नंद महाराज के तनय कौन है? श्री कृष्ण है, वो है आराध्य। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, ब्रजेश तनय जो भगवान है वे आराध्य है। और साथ ही साथ उनका तद्धाम वृंदावनम, उनका धाम वृंदावन धाम भी, उनकी भी आराधना करते हैं। तो पंढरपुर के आराध्य देव कौन है? पंढरीनाथ, राधा पंढरीनाथ, विठल रुक्मिणी, यहां के आराध्य देव है, हम सभी के इष्ट देव है। वे कृष्ण ही है, वे द्वारकाधीश ही है, कोई अलग से भगवान नहीं है। विट्ठल भगवान कोई अलग से भगवान नहीं है, वो कृष्ण तो वृंदावन के, मथुरा के, द्वारका के हुए और फिर महाराष्ट्र के अलग भगवान विट्ठल भगवान। हाँ वो भगवान है, लेकिन हम लोग कई बार समझते नहीं कि कैसे द्वारकाधीश कृष्ण ही विट्ठल रुक्मिणी है। रुक्मिणी द्वारकाधीश ये कौन है? विट्ठल रुक्मिणी है, रुक्मिणी द्वारकाधीश, द्वारका के रुक्मिणी द्वारकाधीश ही यहां के पंढरपुर के विट्ठल और रुक्मिणी है। और फिर यहां गोपालपुर भी है जहां कन्हैया ने अपने गाय चराई है। तो ये वृंदावन से भी अभिन्न है, द्वारका से भी अभिन्न है, ये धाम दो नहीं है। द्वारका और पंढरपुर ये दो नहीं, एक ही है। या वृंदावन और पंढरपुर एक ही है, अलग नहीं। ये आराध्य तो धाम भी आराधनीय और धामी भी आराधनीय। क्या समझे आप? धाम और धामी, एक होता है धाम, वृंदावन धाम। वृंदावन धाम के धामी कौन है? कृष्ण है। बनारस के धामी कौन है? काशी विश्वनाथ शिव जी है। तुलजापुर के धामी तुलजा भवानी है। धाम के धामी होते हैं, हर धाम के, उस धाम में जिनकी आराधना होती है उनको धामी कहते हैं। तो दोनों की भी आराधना, धाम और धामी, भगवान और उनका धाम, दोनों भी आराधनीय है। तो पंढरपुर के भगवान भी आराध्य देव है और ये धाम भी आराधनीय है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, बड़ा सुंदर तात्पर्य निकला, जिस उद्देश्य से हम यहां पधारे हैं, भगवान का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव राधा पंढरीनाथ का, तो इस तात्पर्य में वही चर्चा है, भगवान के विग्रह की चर्चा है। ध्यान से सुनिए। मायावादी तथा नास्तिक लोग भगवान के मंदिर में रखे उनके श्री विग्रहों के रूपों को मूर्ति के रूप में मानते हैं, किंतु भक्तगण मूर्तियों की पूजा नहीं करते। वे तो भगवान के अर्चा अवतार के रूप में उनकी प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। प्रभुपाद वैसे और स्पष्ट होगा जैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बात प्रभुपाद ने इसलिए कही है कि साधारण लोग जिनका नाम लिए हैं प्रभुपाद, मायावादी और नास्तिक लोग, वे विग्रह को नहीं समझते। विग्रह सच्चिदानंद है, इस बात को वे समझते नहीं। विग्रह को साधारण मूर्ति समझते हैं। उनका प्रेम नहीं भगवान के रूप में, ये बड़ी समस्या है। वाह, अर्चो विष्णु शीलाधीर गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि, ऐसा व्यक्ति सीधे नरक का मार्ग पर आगे अग्रेसर होता है। तीन व्यक्ति के नाम लिए है, ताकि अर्चो विष्णु शीलाधीर, विष्णु की जो अर्चा विग्रह है वो शीला ही है, पत्थर ही है, ऐसा जो समझता है वो व्यक्ति एक हो गया। समझ गए। मंदिर में जो मूर्ति है केवल पत्थर है, मैंने तो जान है ऐसे पत्थर, संगमरमर है। अर्चो विष्णु शीलाधीर गुरुषु नरमति, और गुरु भी एक साधारण मनुष्य है, ये दूसरी बात। और वैष्णवे जाति बुद्धि, और वैष्णव किसी जाति का जात पात का विचार, जब हम वैष्णव की पहचान तो एक ही वैष्णव है, वैष्णव जिसने विष्णु की शरण ली हुई है वो वैष्णव है, उसमें जात पात या स्पृश्य अस्पृश्य या ऊंचा नीचा ये बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो करते हैं तो ये तीन प्रकार के लोग नरक में जाने के तैयारी में है। तो हुआ अर्चा से उस रूप का बोध होता है, प्रभुपाद समझा रहे हैं, जिसे हम वर्तमान परिस्थिति में पूछ सकते हैं। वस्तुतः वर्तमान अवस्था में ईश्वर को उनके आध्यात्मिक रूप में देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे नेत्र तथा इंद्रिया आध्यात्मिक रूप की कल्पना नहीं कर सकती। तो हम बद्धावस्था में सांसारिक लोग भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान हम पर विशेष कृपा करते हैं और अर्चा विग्रह के रूप में हमारे समक्ष आके विद्यमान होते हैं, क्योंकि हमारी आंखें क्षमता नहीं रखती है सच्चिदानंद विग्रह भगवान के दर्शन करने की, क्षमता हमारे आंखों में नहीं है, न इंद्रिय। श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान का नाम रूप गुण लीला, इसका न ग्राह्यम इंद्रिय, तो जो कलुषित दूषित इंद्रिया है, संसार के भोग विलासों का सेवन कर करके हमारी इंद्रिया दूषित हुई है, इसलिए आइए हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, इसे क्या करते हम लोग, कई बार हम लोग कहते हैं, आपने सुना भी होगा, हम लोग चलो हम क्या करते हैं अपने वाणी को पवित्र करते हैं, हम लोग कहते हैं चलो हम अपने वाणी को क्या करते हैं पवित्र करते हैं, तो वाणी के साथ वैसे कान को भी और इंद्रियों को भी हम पवित्र करते रहते हैं। तो शुरुआत कहां से करते, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, भगवान की सेवा की शुरुआत मुख से करते हैं, चलो हम प्रभु का नाम को उच्चारण करते हैं, तो जिह्वा जब प्रभु का नाम कहेगी तो जिह्वा पवित्र होगी, कान जब श्रवण करेंगे तो कान पवित्र होंगे, और हाथों की शोभा कंकड़ों से नहीं है, किससे है, सेवा से है। मंदिर मार्जन जब आप करते हो, झाड़ू लेके जब सफाई करते हो, जैसे उन्होंने भी किया, राजा प्रताप रुद्र भी करते थे, तो वो हाथों की शोभा है, और कानों की शोभा कुंडल से नहीं है, या सबसे महंगी ईयरिंग डायमंड्स और क्या क्या जड़ित, उसे कानों की शोभा नहीं है। कानों की शोभा किससे है, जब प्रभु नाम संकीर्तन का श्रवण करेंगे, कथा का जब श्रवण करेंगे हमारे कान, कान से जब कर्णामृत, अरे अरे कर्णामृत नामामृत, का पान करेंगे हम, तब उससे कानों की शोभा है और हमारे सिर की शोभा मुकुट से नहीं है, या देवानंद स्टाइल कई हेयर स्टाइल, हमारे समय देवानंद स्टाइल होती थी, पता नहीं आज कौन कौन चल रही है, लेकिन हमारे जमाने में अलग अलग स्टाइल्स, तो उससे हम सिर की शोभा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर की शोभा किसमें है? माम नमस्कुरु, जब भगवान को नमस्कार करेगा ये सिर, तब सिर की शोभा है। हम लोग, हमारी आंखें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकती, इसलिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में आके उपस्थित हो जाते हैं। यहां तक कि हम आत्मा के आध्यात्मिक रूप को भी नहीं देख सकते। जब मनुष्य मरता है तो हम यह नहीं देख पाते कि आध्यात्मिक रूप किस तरह शरीर को त्यागता है। शरीर, जब शरीर से आत्मा अलग होता है तो किसी को पता नहीं चलता है कब छोड़ा उसने, लेकिन एक एक व्यक्ति ने एक समय प्रयास किया, किसी इंटेंस केयर यूनिट जो होता है ना, आईसीयू, आईसीयू में किसी ने बड़ा पावरफुल कैमरा लगाया। उद्देश्य क्या था? आत्मा का चित्र खींचना है। कब खींचना है? जब आत्मा शरीर से बाहर आता है तो उसका अकेले का फोटो खींचना है, केवल आत्मा का, नॉट विद द बॉडी, आत्मा का अलग से। तो कई ट्रायल के बाद जब करते थे, वो चला भी गया वो आत्मा, तो कई ट्रायल तो ऐसे ही फेल हो गई, लेकिन फाइनली क्या हुआ? एक आत्मा शायद बूढ़ी होगी कुछ, धीरे धीरे निकल रही थी, ऐसा कुछ होगा, तो उसका फोटो निकाल लिया और इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ वर्ष पहले वो फोटो छपा हुआ था, तो कुछ धुंधला सा कुछ था उसमें, दिमाग लड़ा के देखने पर पता चलता था, हाँ 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 लगता है ये पैर है, ये हाथ है, ये तो हम लोग तो शास्त्र की आंखों से देखते थे, हमें तो चश्मा, तो फोटो तो खींचा हुआ है, ऐसे देखते हैं हम लोग, लेकिन जिनका विश्वास नहीं है वे कैमरा लेके आ जाते, दिखा दो, हम देखना चाहते हैं। वैष्णव तो शास्त्र की आंखों से देखता है, शास्त्र चक्षुषा। तो हमारी इंद्रियों का दोष है, हम अपनी इंद्रियों से देख पाए, इस हेतु भगवान उपयुक्त रूप ग्रहण करते हैं जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं। कभी कभी अर्चा विग्रह अर्चा अवतार कहलाता है। अर्चा विग्रह को क्या कहते हैं? कभी कभी शास्त्रों में इसका अवतार भी कहा है। भगवान के प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने अवतार लिया। जो भगवान से भिन्न नहीं है, जिस प्रकार भगवान के अनेक अवतार ग्रहण करते हैं उसी तरह वह मिट्टी, नोट कीजिए, एक हो गई मिट्टी है, लकड़ी, धातु, रत्न जैसे पदार्थों के रूपों को ग्रहण करते हैं भगवान। अलग अलग कितने हैं? या तो चार ही दिए, आठ होते हैं, अलग आठ अलग अलग पदार्थों में, तत्वों में भगवान प्रकट होते हैं। मन भी इसमें एक है, मन में भी भगवान प्रकट होते हैं, या संगमरमर में पेंटिंग्स है, ये भगवान का ऑथराइज्ड प्रामाणिक रूप, अगर शास्त्र के अनुसार पेंटर ने उसको पेंटिंग किया है। भगवान के स्वरूप अंकन के लिए शास्त्रों में अनेक आदेश मिलते हैं। ये स्वरूप भौतिक नहीं है। यदि ईश्वर विश्वव्यापी है तो वो भौतिक तत्वों में भी विद्यमान है। हम कहते हैं ना, भगवान कैसे है, कण कण में भगवान, कण कण में, फिर वो मूर्ति में क्यों नहीं? ये लोग कहते हैं क्या, भगवान कण कण में तो भगवान है लेकिन मूर्ति में नहीं, मंदिर में जाने की थोड़ी आवश्यकता, कण कण में तो फिर मूर्ति में भी है। मूर्ति को तो वो रूप, वही रूप है भगवान का, वो तत्वों के आधार से मदद से वही रूप जो भगवान का अपने धाम में है। यद्यपि वे उपदेश देते हैं कि हर वस्तु ईश्वर है, किंतु जब वे मंदिर में जाते हैं और भगवान के रूप को देखते हैं तो वे उसे ईश्वर मानने से मुकर जाते हैं। वही बात है, भगवान अगर सर्वव्यापक है तो क्या मूर्ति में व्याप्त नहीं है? मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति भी भगवान है, मूर्ति ही भगवान है। उनके ही सिद्धांत के अनुसार वह वस्तु ईश्वर है तो फिर यह अर्च विग्रह ईश्वर क्यों नहीं? प्रभुपाद प्रश्न पूछ रहे हैं। वास्तव में उन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं है, किंतु भक्तों की दृष्टि इनसे भिन्न होती है। उनकी दृष्टि ईश्वर प्रेम से सिक्त रहती है। भगवान के भक्तों की दृष्टि में आंखों में प्रेम होता है, स्नेह होता है। द ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर, अंग्रेजी में कहते हैं। वैसे सौंदर्य तो देखने वालों के आंखों में होता है, जिस वस्तु को या व्यक्ति को देख रहे उसमें नहीं होता है। उसमें भी हो सकता है कुछ, लेकिन आंखों में तो भगवान के भक्तों के आंखों में प्रेम है। तो वो तो दृष्टिकोण अलग अलग है। फिर अगर प्रेम होता है, अपने बच्चों से प्रेम सभी का होता है, तो उसका उतना मुखड़ा सुंदर नहीं है तो भी मां को या प्रियकर प्रेयसी, उनको भी एक दूसरों के मुखड़े लगता है कि ऐसा तो ऐसी जोड़ी तो ढूंढ के नहीं मिलेगी। नहीं, हम सुंदर है, हमारी जोड़ी जो है, तो वो सौंदर्य तो आंखों में होता है देखने वालों के। तो भक्तों का देखने का दृष्टिकोण न्यारा है, प्यारा है। ईश्वर को उनके विभिन्न रूपों में देखते ही वे प्रेमाभिभूत हो जाते हैं, क्योंकि नास्तिकों की तरह उन्हें मंदिर में ईश्वर के रूप तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं दिखता। मंदिर में श्री विग्रह का प्रसन्न मुख भक्तों को दिव्य तथा आध्यात्मिक दिखता है और भगवान के शरीर का अलंकरण भक्तों को अत्यंत प्रिय लगता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह मंदिर में श्री विग्रह को अलंकृत करने, मंदिर को स्वच्छ करने तथा श्री विग्रह की पूजा करने की विधि बताए। हम लोग गाते हैं, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तां शनियुञ्जतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो वही बात, श्री विग्रह आराधना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन, भगवान के विग्रह को अलंकृत करना, मंदिर की स्वच्छता, पूजा अर्चना, इसको सिखाना समझाना गुरु का कर्तव्य है। प्रभुपाद यह लिख रहे हैं, या गुरु अपने युक्तस्य भक्तान शनियुंज, तो गुरु अपने शिष्यों के सास ये सब लगे रहते हैं अर्चा विग्रह की सेवा में। विष्णु मंदिरों में अनेक विधि विधानों का पालन किया जाता है। भक्तगण वहां जाते हैं और विग्रह का दर्शन करते हैं और स्वरूप का आनंद उठाते हैं, क्योंकि सभी विग्रह वरदायक हैं। भक्तगण विग्रहों के समक्ष अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। हाँ, ये बात है, जो यह बात आई थी ना, उनके साथ मुझसे अनुकूल संभाषण करना चाहते हैं, तो विग्रह के समक्ष हर व्यक्ति अपना मनोगत व्यक्त करता है। हर व्यक्ति, उसकी चर्चा यहां हो रही है। भक्तगण विग्रहों के समक्ष अपना मंतव्य ना अंदर का भाव विचार प्रकट करते हैं, और अनेक बार तो विग्रह उत्तर भी देते हैं। विग्रह क्या करते हैं, उत्तर भी अनेक बार देते हैं, किंतु परमेश्वर से बात करने में सक्षम होने के लिए अत्यंत उन्नत भक्त चाहिए। कभी कभी भगवान स्वप्न में संदेश देते हैं। भक्त तथा विग्रह के मध्य विचारों का आदान प्रदान नास्तिकों की समझ के बाहर होता है, किंतु भक्त इनमें आनंद लेते हैं। कपिल मुनि बता रहे हैं कि भक्तगण किस प्रकार विग्रह के अलंकृत शरीर तथा मुखमंडल का दर्शन करते हैं और भक्ति में उनसे बातें करते हैं। तो अंत में, तात्पर्य के अंत में, श्रील प्रभुपाद वही जिक्र कर रहे हैं जो इस श्लोक में कपिल देव कहे हैं। भगवान के दर्शन, सुंदर मुखमंडल और वर प्रदान करने वाले विग्रह भगवान, और ऐसे भगवान के साथ अपना मंतव्य व्यक्त करने की बात। हरे कृष्ण, धन्यवाद।